बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 9 फरवरी दिन शनिवार। मैं हूं मोहम्मद शाहिद। शारदा चिटफंड घोटाले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने गई सीबीआई के विरोध में ममता बनर्जी ने दिया धरना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सीबीआई पर लगाया है मोदी सरकार के इशारे पर चलने का आरोप। क्या सीबीआई वाकई केंद्र के इशारे पर काम कर रही है? बीबीसी इंडिया बोल में आज चर्चा होगी इसी विषय पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर। कार्यक्रम में चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल, लेकिन पहले ठहरेंगे और सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। उत्तर प्रदेश के दो जिलों और उत्तराखंड के रुड़की में जहरीली शराब पीने से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बीबीसी संवाददाता समीरात्मत मिश्र इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं।
सहारनपुर में शुक्रवार को जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 50 के लगभग पहुंच गई है। हालांकि अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक ये 70 से ऊपर बताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक ये लोग हरिद्वार जिले में रुड़की में किसी कार्यक्रम में गए थे और वहीं पर इन लोगों ने जो शराब पी, शायद वो कच्ची शराब थी या जिसको देसी शराब कहते हैं, और उसकी वजह से ये घटना हुई है।
आप सुन रहे थे बीबीसी संवाददाता समीरात्मज मिश्र से पूरी खबर। राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर समुदाय ने आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन के चलते रेल यातायात प्रभावित रहा। गुर्जर समुदाय के प्रदेश में नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की मांग कर रहा है। पड़ोसी मुल्क चीन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की निंदा की है। चीन का कहना है कि वो इस राज्य में भारतीय नेताओं की गतिविधियों का विरोध करता है। बीजिंग ने दावा करते हुए कहा है कि यह राज्य दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई में होने वाले आम चुनावों से पहले राज्य में जनसभाओं को संबोधित करने के लिए दौरे पर थे। ये दौरा राज्य में पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से था। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन के दावे को नकारते हुए कहा है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है। ब्राजील के सबसे लोकप्रिय फुटबॉल क्लब फ्लेमेंको के एक प्रशिक्षण केंद्र में आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। ये आग दिन के पहले पहर में लगी और बढ़ते बढ़ते उस कमरे तक जा पहुंची जहां फ्लेमेंको की यूथ टीम थी। टीम के सदस्य 14 से 17 साल की उम्र के थे। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में 2 घंटे का वक्त लग गया। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। टीम के एक समर्थक ने कहा, मैं अभी 29 साल का हूं और आपको बताऊं, मैं इतने ही सालों से इनका प्रशंसक भी हूं। हमारे गान का सबसे अहम हिस्सा है कि जो एक बार फ्लेमेंको का सदस्य बना वो हमेशा के लिए फ्लेमेंको का सदस्य हो गया। फिलहाल तो हम सभी उन खिलाड़ियों के लिए दुआ कर रहे हैं जो अस्पताल में हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। हजारों की संख्या में येलो वेस्ट प्रदर्शनकारियों ने पेरिस में मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। ये लगातार 13वां सप्ताह है जब प्रदर्शनकारी हजारों की संख्या में जुटे और मार्च निकाला। इससे पहले कुछ प्रदर्शन हिंसक उठे थे, जिसके चलते इस बार पुलिस की ओर से खासी सावधानियां बरती गई थीं। प्रदर्शनकारी फ्रांस के अन्य हिस्सों में भी इस मार्च को लेकर जाने की योजना बना रहे हैं। ये प्रदर्शन राष्ट्रपति मैक्रों की सरकारी नीतियों के खिलाफ और बढ़े हुए ईंधन के दामों के विरोध में हो रहे हैं। ये प्रदर्शन का 13वां सप्ताह है और प्रदर्शनकारियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन ये अभी भी हजारों की संख्या में है। साल 2015 में एक संग्रहालय और रिजॉर्ट में गोलीबारी और ग्रेनेड धमाकों में शामिल रहे 7 जिहादियों को ट्यूनिशिया में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इन हमलों में 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर पर्यटक ही थे। दूसरे हमलावरों को कुछ सालों की सजा सुनाई गई है, जबकि 27 को बरी कर दिया गया है। हालांकि हमले के मास्टरमाइंड को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। थाईलैंड के राजा वाजीरालोंग कोर ने मार्च में होने वाले प्रधानमंत्री चुनाव में अपनी बहन की अप्रत्याशित दावेदारी को अनुचित बताया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री थॉक्सिन चिनावट की सहयोगी पार्टी, जिसने राजा की बहन को उम्मीदवार के लिए नामित किया है, उनका कहना है कि इस पहल से शाही परिवार की राजनीति से दूर रहने की परंपरा टूट जाएगी। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। बीती रविवार शाम को सीबीआई कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार के घर पर पहुंची। वो उनसे करोड़ों रुपए के शारदा चिटफंड घोटाला मामले में पूछताछ करने गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के घर पहुंची और इसे केंद्र की मोदी सरकार के इशारों पर की जा रही कार्रवाई बताया। बाद में ममता बनर्जी धरने पर बैठ गईं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को पूछताछ की अनुमति दिए जाने के बाद ममता ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। ममता के धरने का कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने समर्थन किया और सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाए। हाल के समय में अपने प्रमुख की नियुक्ति से लेकर कई मामलों के कारण विवादों में घिर चुकी सीबीआई को क्या पाक साफ समझा जाना चाहिए, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुफ्त कॉल करिए। हमारा नंबर नोट कर लीजिए जो है 1811-7000 या 1811-7001। एक बार फिर नंबर सुनिए 1811-7000 या 1811-7001। राजेश बादल जी, बीबीसी इंडिया बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद
जी। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि एक केंद्रीय जांच एजेंसी जिस पर बड़े बड़े मामलों की जांच का भार है और जो हमेशा से किसी ना किसी विवाद में भी रही है
जी,
तो इस तरह से उसकी जांच करने के लिए पहुंचना, एक पुलिस कमिश्नर के घर पे एक कथित तौर पे कह सकते हैं जो कह रहे हैं छापा मारना, उसके किस इरादे को बताता है?
देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो भारत का केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बड़ी ख्याति है, प्रतिष्ठा है, इंटरपोल की ये अधिकृत प्रतिनिधि है भारत में। और जहाँ तक इसका जो मामले सुलझाने का जो प्रतिशत है वो भी 65% से अधिक है। अब जो सवाल आपने किया है कि अगर ऐसी एजेंसी जब इस तरह से पहुँचती है तो उसका आम आदमी पर क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। मैं ये कहता हूँ जांच एजेंसी कोई भी जाए, भारत में कहीं पर भी किसी भी मामले में किसी को कभी कोई संदेह नहीं होता और वो आमतौर पर कोऑपरेट करते हैं
जी।
लेकिन ये ज़रूर देखा जाता है कि कब और किस अवसर पर वो जांच एजेंसी पहुंची है। भारत में इन दिनों चुनाव का समय है, चुनाव का मौसम है और चुनाव भारत में उत्सवों की तरह होते हैं, आपको जानकारी होगी
जी।
तो जब ऐसे होता है और ऐसे समय में जब सीबीआई एक ऐसा मामला लेके पहुंचती है जो पांच वर्ष पहले रजिस्टर हुआ था
जी,
और अचानक वो संडे की शाम पहुंच जाती है, तो थोड़ा सा संदेह उठना स्वाभाविक है।
कह रहे हैं राजेश बादल जी। अब हम इशारा करते हैं हमारे स्टूडियो मैनेजर अजीत सारथी की ओर, पूछते हैं कि क्या कोई कॉलर इस पर अपनी बात रखना चाहता है। जी, मेरी किससे बात हो रही है?
हेलो
जी, अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें।
सर, मैं विकास कुमार अनंतपुरा तहसील सांसद जिला जालौर राजस्थान से बोल रहा हूं।
जी बताएं, आप क्या सोचते हैं?
सीबीआई पे सवाल उठाना एक गलत बात है, ममता बनर्जी का ही ड्रामा था।
अच्छा,
और इसमें ये केंद्र सरकार की बात रही, केंद्र सरकार की कोई इस तरह पे कोई जांच एजेंसी नहीं चलती है
जी।
चलिए,
ये कह रहे हैं कि राजनीति नहीं है इस पे, सीबीआई की कार्रवाई पे सवाल नहीं उठाने चाहिए। देखते हैं कि अगले कौन से श्रोता हैं, वो अपनी बात क्या रखते हैं। जी
हेलो
जी, आप नाम बताएं अपना और अपनी बात रखें।
जी, पठान खान गज्जू बोल रहा हूँ।
पठान खान जी, पठान खान क्या कहते हैं आप?
मैं यही कहना चाहता हूँ जो ये सीबीआई, ये इसमें कुछ नहीं, ये सरकार कहती है वही काम करती है, कठपुतली बन चुकी है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस
जी।
जो कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस के कहने पे चल रही थी
जी,
और अभी बीजेपी जो कह रही है वही चल रही है, उसके कहने पे चल रही है
जी।
मेरी राय यही है
जी। चलिए राजेश जी, एक श्रोता कह रहे हैं कि ममता की कार्रवाई जो इन्होंने की है तो ममता पे सवाल उठा रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि सीबीआई कठपुतली है। तो जैसे सीबीआई ने कहा कि वो राजीव कुमार जो एसआईटी के प्रमुख रहते थे, जब वो जांच कर रहे थे, जब तक एसआईटी के पास मामला था, पश्चिम बंगाल पुलिस के पास मामला था, तब कहा गया कि वो सबूत नष्ट कर रहे हैं। और वहीं बीजेपी के लिए भी अब कहा जा रहा है कि आम चुनावों में पश्चिम बंगाल वो बहुत अहम मान रही है। लेकिन ममता को लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने सवाल उठाए हैं कि राजीव की गैर मौजूदगी में वो रविवार को सीबीआई पूछताछ करने के लिए पहुंची, तो इसने सीबीआई की कार्रवाई और राजनीतिक पहलुओं को सामने नहीं ला दिया है?
कहीं ना कहीं इसमें राजनीति का रिश्ता है, और रिश्ता इसलिए है कि ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री होने के नाते राजीव कुमार को ये जिम्मेदारी सौंपी है और उन्हें अपने शासन का एक काबिल अधिकारी पाया है। राजीव कुमार के पास सबूत इसलिए भी थे क्योंकि शुरुआती तौर पे वो खुद जांचकर्ता अधिकारी थे। अब जब वो जांचकर्ता अधिकारी थे और 2017 में उन्होंने सीबीआई को एक चिट्ठी लिखी थी, इस चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि जो सीबीआई है उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है। अफसोस ये है कि उस चिट्ठी पर कोई कार्रवाई क्या हुई क्या नहीं हुई, और अगर वो सबूत दे देते तो शायद वो उनके साथ कितना न्याय होता। सीबीआई को ये बात अब आज जो पूछताछ हुई है मुझे लगता है इसमें कुछ सामने आएगा, लेकिन राजीव कुमार का पक्ष अपनी जगह जायज़ है क्योंकि वो कोई अपराधी नहीं है। मैं बार बार इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि संडे की शाम जिस तरह से सीबीआई का दल गया वो थोड़ा सा भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी जाँच एजेंसी के लिए अशोभनीय है। दृश्यता
आप अशोभनीय बता रहे हैं राजेश जी, लेकिन क्या ममता बनर्जी की जो कार्यशैली है वो एक तरीके की जो एक कार्यशैली है कि वो उठ खड़ी हुई जाके उन्होंने धरना दे दिया, तो उस बात का क्या होगा कि एक संघीय जांच एजेंसी है तो उसकी खिलाफ कार्रवाई को क्या समझा जाए?
अभी आपके पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं कार्यशैली पर सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि समय टाइमिंग क्या थी। ये जो एजेंसी की टाइमिंग है ये दिमागों में कुछ शक पैदा करती है। शक इसलिए पैदा करती है कि अभी 3 राज्यों में भारत में जो सत्तारूढ़ सरकार है उसको झटका लगा है, बीच में उपचुनाव जो हुए उनको झटका लगा है। अब जिस तरह से 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपने दम पर बहुमत जुटाया था, अगर 3 राज्य निकल गए और अगर लोकसभा चुनाव में भी कुछ इस तरह के परिणाम रहे तो कौन से राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर सकती है? बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है। तो बंगाल में मुझे लगता है ममता बहुत तेज और चतुर राजनेता हैं। शायद उन्हें लगा कि ये जो चिटफंड घोटाला है उनकी सरकार की छवि खराब कर सकता है, और उस छवि के लिए उन्होंने राजीव कुमार को बचाने के लिए जिस तरह से धरना किया, सभी लोगों को बुलाया, प्रतिपक्ष को बुलाया। मैंने कहा ना कि अब चुनाव का समय आ गया है तो अब राजनेताओं के हर कदम में राजनीति होगी, चाहे वो पक्ष हो और चाहे वो प्रतिपक्ष।
चलिए, ये तो आपने बात कहा कि चुनाव आ रहा है, राजनीतिक की बात है, लेकिन आप खुद ही कह रहे थे कि ये इतनी बड़ी जांच एजेंसी है जिसकी विश्व में भी ख्याति है, तो ये आप, लेकिन एक जिस तरीके से हमारे सोशल मीडिया पे कुछ हमारे पाठक होते हैं जो अपनी राय रखते हैं, तो उसमें एक पाठक ने अपनी बात रखी है, वो नागेंद्र शाह नाम है उनका, वो कह रहे हैं कि अगर यदि इसमें कुछ हो भी रहा है तो इसमें बुरी बात क्या है, सीबीआई कार्रवाई तो कर रही है, उसका एक काम तो कर रही है, तो वो उस काम करने को क्या कहेंगे?
नहीं, मैंने सीबीआई की कार्यशैली और जांच करने के तरीके पर कोई सवाल नहीं उठाया है। मैंने कहा है कि भारत में जांच एजेंसियां साल भर काम करती हैं, लेकिन जब वो चुनाव के आसपास ये काम करती हैं तो लोगों के मन में ये संदेह और सवाल उठते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि चलिए हम इसको बात को दूसरी तरह से लेते हैं कि दूसरी भी एजेंसियां होती हैं, अभी इन दोनों प्रवर्तन निदेशालय की भी कुछ जांचें चल रही हैं, तो अचानक ये जो जांचों का मामला तेज हो गया है उसको लेकर के कई दफे होता यह है, ठीक है स्वतंत्र एजेंसी रही है भारत में और इस पर आमतौर पर दबाव नहीं आते रहे, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन दबाव कहां से आते हैं? दबाव 2 तरह से होते हैं। एक तो दबाव मनुष्य या अधिकारी जो है वो अपने ऊपर खुद ओढ़ लेता है कि उसके अपने कोई दिलचस्पी है, अपना कोई इंटरेस्ट है, और दूसरा यह है कि कुछ सोचता है कि अभी केंद्र में अमुक सरकार है, शायद मेरा ये जांच का निष्कर्ष पसंद ना करे, तो दबाव ना होते हुए भी कई बार वो दबाव ओढ़ लिए जाते हैं।
चलिए राजेश जी, आप कह रहे हैं दबाव ना होते भी ओढ़ लिए जाते हैं, सुनते हैं हमारे श्रोता कौन अगले हैं जो टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, अपना नाम बताएं और आप कहां से बोल रहे हैं ये भी बताएं। हेलो जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो जी, बढ़ते हैं अगले श्रोता की ओर, देखते हैं कौन है, इनसे संपर्क टूट गया है लगता है हमारा। जी हेलो जी, नमस्कार, मेरी किससे बात हो रही है, आप अपना नाम बताएंगे?
मैं मैं बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ।
जी बसंती लाल सूर्यवंशी जी, बताएं क्या राय है आपकी इस विषय पर?
मेरी राय ये है कि जैसे इनकम टैक्स या कोई भी जांच या कोई भी होता तो ये का सही कहना है कि जैसे चुनाव के तौर पे ऐसा क्यों होता है, जैसे 5 साल 10 साल से सरकारें चलती है तो सबका जांच पहले से क्यों नहीं होता, ये कहना था मेरा। और जैसे ममता बनर्जी ने ये मुद्दा भी उठाया तो सही उठाया, जैसे
जी
जांच होनी चाहिए,
जांच होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले श्रोता की ओर और सुनते हैं उनका क्या कहना है। जी
नमस्ते शाहिद सर, मैं गौरी सेन बात कर रही
हूँ। जी गौरी सेन
से,
जी बिल्कुल
लखनऊ से बोल रही हूँ।
जी गौरी सेन, आप हमारी बहुत पुरानी श्रोता हैं और अक्सर आप हमें चिट्ठियां भी लिखती हैं। जी स्वागत है आपका, बताएं आप क्या राय है आपकी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपकी जो इंडिया बोल की प्रस्तुति है जो बांध के रखती है बहुत ज्यादा, उसके लिए आपको मुबारकबाद देती हूँ। और फिर अब अपने
जी बताएं,
मैं आपसे विषय पे आती हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सर ये मेरा इस पे ये मानना है जो हमारे विशेषज्ञ महोदय कह रहे हैं, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है किसी भी कोई स्वतंत्र इकाई है जो सीबीआई है या फिर कोई भी संस्थान है उस पे अगर सरकार का या सत्तारूढ़ जो सरकारी मतलब सरकारें हैं उनका नियंत्रण साफ साफ दिखने लगे, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है।
जी जी लगता है संपर्क टूट गया है। जी राजेश बादल जी, जिस तरीके से बसंती लाल शर्मा थे उन्होंने बात कही कि चुनाव के समय बातें आ जाती हैं, गौरी ने भी कही कि चुनाव के समय बात आ जाती हैं, और इस मामले में भी अगर देखा जाए जब चिटफंड घोटाला 2013 में सामने आया, लेकिन उससे पहले जो टीएमसी के नेता थे उनके खिलाफ भी बात आई, और हेमंत बिस्व शर्मा थे असम में उनके खिलाफ भी आई, तो और अब 2000 उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई, 2015 में वो जब बीजेपी में आ गए तो उसके बाद भी कोई पूछताछ नहीं हुई उनसे।
आप ठीक कह रहे हैं, जब ये मामला प्रकाश में आया था तो तृणमूल कांग्रेस में जो कुछ नेता थे जिनके नाम भी आए थे और उनके पास सबूत भी थे और पर्याप्त कारण थे कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। दुर्भाग्य से क्या हुआ कि जब उन्होंने पार्टी बदल ली तो उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस में रह गए या जो जो लोग रह गए उनके बारे में ये कहा जाता रहा कि वो इस घोटाले से उनके तार जुड़ते हैं। तो जब आम आदमी है इस चीज़ को देखता है कि एक अमुक लीडर किसी दूसरी पार्टी में है जो प्रतिपक्ष की है, तब तक वो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ है, और जैसे ही वो सत्तारूढ़ पक्ष में चला जाता है उस पार्टी में चला जाता है तो अचानक वो दूध का धुला हो जाता है, ये बात थोड़ा सा लोगों के दिलो दिमाग में पचती नहीं है, लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाते, ये उन्हें लगता है कि वजह क्या है इसके पीछे। और इसीलिए जो मैं कहता हूँ कि जो भारत में जांच एजेंसियों की अभी भी प्रतिष्ठा है लेकिन हालिया घटनाक्रम में वो अपनी कोई नैतिक मान्यता जो है उनकी वो कहीं ना कहीं खो रही है।
तो ये एक बहुत आम सा सवाल होगा, आपने नैतिक मान्यता की बात की, जांच की प्रतिष्ठा की बात की, तो ये कैसे स्थापित होंगी?
जाहिर सी बात है कि अधिकारियों को भी ये बात सोचनी होगी कि वे जिस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं उसका इतिहास और अतीत क्या है। मैं याद दिलाऊंगा आपको, एक टीएन शेषन हुआ करते थे, हम लोगों ने देखा है उनकी कार्यशैली जब वो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने तो उस समय तक भी निर्वाचन आयोग पर कई तरह की बातें होती थी, चुनाव सुधार ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे, ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है सब कुछ। लेकिन टीएन शेषन ने जिस तरह से उस चुनाव आयोग की साख को दोबारा कायम किया बनाया और उनके रहते जितने भी चुनाव हुए कोई उस पर उंगली नहीं उठा पाया।
जी तो चुनाव आयोग की बात की आपने, इसी तरीके से प्रवर्तन निदेशालय पे भी सवाल उठते रहते हैं।
बिल्कुल, तो प्रवर्तन निदेशालय ने अब देखिए इन दिनों जिस तरह से बात चल रही है, ये मामला भी इसी तरह का है कि 2014 में दर्ज होता है, 2014 के चुनाव में मुद्दा बनता है, पार्टी का मुद्दा बनता है, प्रचार में उसको उठाया जाता है, लेकिन 15, 16, 17, 18 कुछ नहीं होता, ये जानकारी नहीं मिलती कि वाकई में क्या कार्रवाई हुई है अभी तक। और जैसे ही 2019 आता है तो ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो जाती है।
तो ये तो एक कार्रवाइयों की बात हुई, आपने कहा कि इसमें जो नेता हैं उनको रहना होगा, लेकिन इस मामले में भी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसी ने ही 2014 में सभी मामलों को एक करके सीबीआई को जांच सौंपी थी, तो यानी कि मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी यकीन है सीबीआई पर।
देखिए, जो मैं आपको बताऊं कि राज्यों में जो जांच है वो सीबीआई अपने दम पर नहीं कर सकती
जी।
जब तक राज्य सरकार अनुमति और सहमति नहीं देती तब तक सीबीआई उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। कब जा सकती है सीबीआई? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय उसे अधिकृत करता है। तो ये भी एक आश्चर्य की बात है कि संडे की शाम जब सीबीआई वहाँ पहुँचती है कलकत्ता में, तो 5 वर्षों की ढिलाई या 5 वर्ष कुछ ना काम करने की वजह वो साफ नहीं करती, कोई अधिकृत वारंट उसके पास नहीं होता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट से उसने उस दिन छापा डालने की अनुमति भी नहीं ली होती है। ये बात अगले दिन जब सुनवाई हुई तब ये बात साफ आई। और देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया तो आज शिलोंग में राजीव कुमार सहयोग कर रहे हैं, पूछताछ हो रही है।
लेकिन उनके ऊपर पहले भी आरोप लगते रहे, सीबीआई कहती रही कि वो सहयोग ही नहीं कर रहे हैं, हमने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, ये भी कहा है सीबीआई ने।
देखिए, जांचकर्ता अधिकारी के तौर पर जैसे मैंने अभी कहा कि 2017 में राजीव कुमार ने एक खत लिखा था सीबीआई को और उस खत का उनको उत्तर नहीं मिला
जी।
उस उत्तर में उन्होंने सीबीआई के शैली पर सवाल खड़े किए थे। उस खत में उन्होंने कुछ बात ऐसी कही थी कि जैसे उनके पक्ष में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो अगर किसी जांचकर्ता अधिकारी को, मैं बार बार दोहराऊंगा कि वो आरोपी नहीं है इस मामले के, वो अपराधी नहीं है इस मामले के, लेकिन वो खुद भी जांचकर्ता है, तो जब जांचकर्ता को ये लगता है कि उसके सबूत जो उसके पास हैं अगर वो संबंधित एजेंसी के पास जाएंगे तो शायद न्याय नहीं होगा मामले के साथ। मेरा ख्याल है, अब ये बात तो आज हुई है, पूछताछ आगे आएगी,
आगे क्या होता है,
लेकिन मेरा अंदाजा है कि जो पत्र के बाद उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला शायद इसलिए उनकी ये क्रिया रही।
चलिए बढ़ते हैं एक अगले श्रोता की ओर, अजीत सारथी मुझे इशारा कर रहे हैं लेने के लिए। जी अजीत सारथी, बताएं कौन है जी, मेरी किससे बात हो रही है?
हेलो
जी, अपना नाम बताएं।
नमस्कार सर, मैं परवेज बात कर रहा हूँ।
जी परवेज, बताएं क्या है आपकी राय?
सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और सीधा विषय पे आता हूँ।
जी
देखिए सर, जो सीबीआई संस्था रही है इसका एक गौरवशाली इतिहास है, जैसा कि बादल जी ने भी कहा, लेकिन इस पूरे मामले में जिस थोड़ा सा लचर तरीके से जो उन्होंने कार्रवाई की और टाइमिंग तो इशू है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो 42 सीटें हैं बंगाल में आने वाले चुनाव को लेकर, और जिस तरह से बीजेपी को हाल में नॉर्थ ईस्ट में सफलता मिली है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और सब ये तो सर्वविदित है कि बंगाल में जो है कांग्रेस कहीं है नहीं ज्यादा, और कम्युनिस्ट की जमीन भी धीरे धीरे सरक रही, तो वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, और बीजेपी कहीं ना कहीं चाह रही, अचानक से बीजेपी की बहुत गतिविधियां हो रही हैं बंगाल में, बहुत मतलब ऑल ऑफ अ सडन सब लोग देख रहे हैं, ये उसी का हिस्सा एक लग रहा है। दूसरी बात ये है कि मोदी के अगेंस्ट कौन है केंद्र में, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, भावी वैकेंसी है, तो इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने भी भुनाने की कोशिश की है, अपने आप को विपक्ष का एक नेता स्थापित करने की कोशिश वो कर रही है कि मोदी के अगेंस्ट वो है और फिर सारे तमाम विपक्ष के नेताओं का उनके पक्ष में आ जाना
जी,
और सब लोग एक मौका तलाश रहे हैं
जी। परवेज, दोनों तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया इतनी बैलेंस टिप्पणी के लिए। जानते हैं अगले श्रोता कौन है, उनकी राय क्या है।
हेलो
जी, हेलो, बताएं आप अपना नाम और कहां से बोल रहे हैं।
राजन गुप्ता, मोहनगंज प्रतापगढ़ यूपी।
जी राजन जी, बताएं।
सर जो कार्रवाई सर हुई है
जी,
वो सर निसंदेह ही सर वो तो पॉलिटिकल लगता है, क्योंकि सब सत्ता का खेल है
जी,
लेकिन जो कार्यशैली ममता जी की भी रही है वो भी उचित नहीं कही जा सकती
जी।
और सर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में सीबीआई गई थी ये सही है, लेकिन जो टाइमिंग था कहीं ना कहीं वो संदेह के घेरे में है
जी।
और सर ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है उसमें चिटफंड की बात है, तो उसमें गरीबों का पैसा लगा है, ममता जी को भी उधर ही प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके ही पार्टी के या कुछ और पार्टी के लोगों के जो नाम आया हुआ है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ममता जी ने किया, वो भी उचित नहीं है, कहीं से भी लोकतांत्रिक तरीके उसमें नहीं आता है वो
जी। राजन जी बहुत बहुत जी जी शुक्रिया आपकी एक टिप्पणी के लिए जी।
सर सर मैं ब्लाइंड हूँ सर, मैं आपका प्रोग्राम पिछले सर लगभग 17 से सुन रहा हूँ
जी जी।
और सर मैं आपके ऑफिस में गया था
जी जी,
फैसल जी से मेरी मुलाकात
जी, बिल्कुल जी, आप अपनी राय रखें। जी
सवाल भी दे
जी बिल्कुल जी मेरी किससे बात हो रही है, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
हेलो
जी, आप अपनी अपना नाम बताएं, अपनी राय रखें।
सर मैं नरेश बोल रहा हूँ पंचकुला हरियाणा से।
जी नरेश जी बताएं।
हाँ मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी जो संवैधानिक संस्था है जिस ये आपका सुप्रीम कोर्ट इसकी डायरेक्शन में सारा ये काम चल रहा है और 2014 से केस डील कर रही है और उसके 65% जो है वो केसेस ठीक होते हैं, तो अपनी साख बचाने के लिए सीबीआई तो अच्छा ही काम करती है, अपने प्रदेशों को बढ़ाना चाहती है, लेकिन ये इस टाइम जो है गलत समय पॉलिटिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी इशू को जो है कन्वर्ट किया जा सकता है पॉलिटिकली
जी,
पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आजकल जो जिस तरह से अपोजिशन और ये जो गवर्नमेंट के ऊपर जो छापे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कोई लिमिट ही नहीं है। देखिए ना किस तरह की बातें की जा रही है, बिल्कुल जो है हर तरह के जो है मॉरल को खत्म करके जो इस लेवल पे आ गए हैं कि संस्थाओं को बर्बाद कर देना, तो मैंने समझता कि ये ठीक चल रहा है
जी।
मेरे ये है कि बिल्कुल ठीक काम कर रही है सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, इतनी अच्छी संस्था हमारी है और गवर्नमेंट जो है वो अन्य सीरीज को ट्रैप किया जा रहा है कि गलत कर रही है।
जी नरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस टिप्पणी के लिए। राजेश बादल जी, एक परवेज राजन, दोनों ने कहा कि दोनों ही इस्तेमाल करते हैं, नरेश ने कहा कि एक इतनी प्रतिष्ठित संस्था है, प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हाल फिलहाल में हम देखते आए हैं आलोक वर्मा बनाम राकेश अस्थाना का मामला हो या 2G घोटाले के दौरान रंजीत सिन्हा का मामला हो, और तो और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पिंजरे में बंद तोता भी कहा और 1995 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको राजनीतिक प्रभाव से बचाना चाहिए। चलिए ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन इस तरीके से ममता का धरने पर बैठना, सीबीआई को कार्रवाई करने से रोकना, एक संवैधानिक संकट वाली समस्या नहीं खड़ी हो जाती? और इसके अलावा पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने सीबीआई से विश्वास अपना हटा लिया था, वो जांच के लिए जो एक राज्य देता है अनुमति, तो एक दोनों एक संवैधानिक संकट जैसी बात नहीं लगती आपको?
ये मीडिया में ये बात आई है कि कहीं ना कहीं ये संवैधानिक संकट था, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जिसने संविधान की शपथ ली हुई होती है उसको धरने पर क्यों बैठना चाहिए। लेकिन ये हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में कोई पहला अवसर नहीं था, इससे पहले भी मुख्यमंत्री लगातार धरने पर बैठते रहे हैं, और देखिए मुख्यमंत्री होने के अलावा कुछ मामलों में उनकी राजनीतिक जिम्मेदारियाँ भी हैं, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी 2 महीने बाद फिर चुनाव का सामना करेगी और उनका मुख्य मुकाबला या तो कांग्रेस से होगा या भारतीय जनता पार्टी से होगा, कांग्रेस से उनका कोई सहयोग तो है नहीं।
और 2014 में पश्चिम बंगाल ही और टीएमसी ही एक राज्य था जो मोदी लहर से बचा हुआ
बिल्कुल था। तो जब इतनी चुनौती भरी स्थिति वहां है तो ममता बनर्जी को प्रोएक्टिव होकर सामने क्यों नहीं आना चाहिए? और मैं बार बार दोहराऊंगा, राजीव कुमार आरोपी नहीं है, अपराधी नहीं है, वो खुद भी शुरुआती अवस्था में जांचकर्ता अधिकारी रहे हैं।
जी चलिए एक श्रोता को और ले लेते हैं। जी बताएं क्या नाम है आपका और आपकी राय क्या है, संक्षेप में रखिएगा।
मेरा नाम रामधनी यादव, जौनपुर से बोल रहा हूँ साहब।
जी
आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, समस्त अपने बीबी से लंदन संपर्क।
जी बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया शुक्रिया इतनी बातों के लिए, और संक्षेप में रखिए बात।
हेलो, जो आप लोग हमारा एक नेत्र बने हैं राजनीति का, देश संचालन हम लोग नेत्र दे रहे हैं, यह जो हो रहा है ममता बनर्जी सही कर रही हैं साहब
जी,
वही है कि अंधा राजा धन दूसरा जगह हो रहा है। अब अगर प्रधानमंत्री के बिगैर आदेश, बिना न्यायालय के आदेश का या बिना प्रांतीय आदेश का सीबीआई जा रही है तो गलत कर रही है सर।
चलिए बहुत 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 धन्यवाद रामधनी जी इस संक्षेप की, एकदम संक्षिप्त टिप्पणी रखने के लिए। इन्होंने कहा कि सीबीआई जा रही है, सारी चीज़ें जितने श्रोता रहे, कोई कह रहा है कि वो सही कर रहे हैं, कोई कह रहा है वो सही कर रहे हैं। राजेश जी एक सिर्फ एक अंतिम सवाल ये रहेगा आपसे, जिसमें संक्षेप में चाहूँगा आप जवाब दें। हर बार बात उठती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, यूपी आती है, एनडीए आती है और कहा जाता है कि भाई सीबीआई को बंद कर दिया जाना चाहिए, क्या ये एक यही एक हल है अगर इसका राजनीतिक इस्तेमाल,
बिल्कुल
कथित राजनीतिक इस्तेमाल की बात की जाए?
इसका हल ये नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है, हमारे राजनेताओं को भी थोड़ा सा परिपक्व और समझदार होने की आवश्यकता है। उन्हें अपनी एजेंसियों पर भरोसा करना सीखना होगा और उनका दुरुपयोग अगर वो करते हैं अपने किसी हित के लिए तो उस पर भी उन्हें कंट्रोल रखना होगा। वो अगर जनाधार के साथ में चुनाव में आएंगे तो शायद उस वो कहीं अधिक स्वाभाविक चुनाव होंगे।
जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश बादल जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी अपनी टिप्पणियां रखने के लिए, और साथ ही धन्यवाद हमारे श्रोताओं का भी जिनको शामिल नहीं कर पाए उनसे माफी। बीबीसी इंडिया बोल में आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और एक नए मेहमान के साथ। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। ताज़ा खबरों के लिए आए हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को दें अनुमति। नमस्कार।